शान सुभाष जी को उनके कमरे में छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आरवी के बारे में उसकी सोच बदलने लगी थी, पर अब भी अतीत की कड़वी यादों ने उसके दिल को जकड़ा हुआ था, जिससे वहां वो आरवी के लिए जगह नहीं बना पा रहा था। वो कमरे में पहुंचा तब आरवी अंशु को थपकी देते हुए स्टोरी सुना रही थी, पर अंशु आंखें खोले उसे देखे जा रही थी। आरवी ने उसकी आंखों को अपनी हथेली से ढकते हुए कहा, बेटा आंखें तो बंद कीजिए, ऐसे नींद कैसे आएगी आपको। अंशु ने उसकी हथेली हटाते हुए कहा, मम्मा अंशु को नीनू नहीं आ रही। शान ने उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बात है, आज हमारे बच्चे को नींद नहीं आ रही। उसकी आवाज सुनते ही अंशु उठकर बैठ गई और अपनी प्यारी प्यारी आंखों को टिमटिमाकर उसको देखते हुए बोली, नो डैडी, आज अंशु को नीनू नहीं आ रही। शान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, अच्छा अगर अंशु को सोना नहीं है तो और क्या करना है। उसका सवाल सुनकर अंशु कुछ देर अपनी ठोड़ी पर उंगली रखकर गहराई से सोचने लगी, फिर एकदम से खुश होकर बोली, आज ना अंशु को डैडी से स्टोरी सुननी है। उसकी बात सुनकर शान मुस्कुराया, फिर उसको लिटाते हुए बोला, ओके डैडी आपको स्टोरी सुनाएंगे, पर उसके लिए पहले आपको अपनी आंखों को बंद करके गुड गर्ल की तरह लेटना होगा। उसकी बात अंशु झट से मान गई और शांति से लेट गई। शान उसके दूसरे तरफ तिरछा होकर लेट गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए जैसे ही कहानी शुरू करने को हुआ, अंशु ने झट से अपनी आंखें खोल दी और आरवी जो उसके बगल में बैठी हुई थी उसे देखकर मुस्कुराकर बोली, मम्मा आप भी सोइए ना, अंशु मम्मा और डैडी दोनों के साथ सोएगी। उसकी बात भला आरवी कैसे काटती, तो वो भी थोड़ा टेढ़ी होकर लेट गई। अंशु ने दोनों के एक एक हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रख लिया। दोनों की हथेली एक दूसरे से छू गई। एक खूबसूरत एहसास को महसूस करते हुए दोनों की निगाहें एक दूसरे की तरफ मुड़ गई। शान ने तुरंत उस पर से नजरें हटाते हुए अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, पर अंशु ने दोनों की हथेली को पकड़ा हुआ था। और कोई रास्ता ना देखकर शान ने वैसे लेटे हुए ही उसको कहानी सुनानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में अंशु गहरी नींद में सो गई। शान ने नजरें उठाकर देखा तो आरवी भी सो चुकी थी। शान ने अब अपना हाथ पीछे खींच लिया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद उन्हें खामोशी से देखने लगा। उसके दिमाग में आरवी की कही बातें घूम रही थी। कुछ देर उन्हें देखने के बाद शान आराम से बेड से उठा और स्टडी रूम में चला गया। रात के 11 बज रहे थे। उसने आरवी का फोन निकालकर उसको ऑन किया और उन मैसेजों को ध्यान से पढ़ने लगा। फिर उसने उस नंबर को शेखर, जो उसके लिए काम करता था, उसके नंबर पे भेज दिया। साथ में एक मैसेज भी था, इस नंबर की पूरी जन्म कुंडली मुझे कल शाम से पहले मेरे टेबल पर चाहिए। शान ने मैसेज सेंड किया। कुछ ही मिनट बाद सामने से ओके सर का मैसेज आ गया। शान की नजरें उन मैसेजों पर टिकी हुई थी। उसके हर मैसेज में एक धमकी झलक रही थी। ये नंबर विहान का ही था और शान को आरवी की कही बातें याद थी, जिससे वो इतना तो समझ गया था कि ये विहान वही लड़का है जिससे आरवी की शादी हो रही थी। पर अब सवाल ये था कि आखिर किस चीज की धमकी दे रहा है विहान आरवी को। जहां तक वो उसे समझ पाया हो तो वो एक साफ दिल वाली मासूम सी लड़की है, जो सही को सही कहती है, गलत के खिलाफ आवाज उठाती है, जिसमें बहुत हिम्मत है, जो सबकी खुशी के बारे में सोचती है, कोई साजिशें नहीं रचती ना ही रच सकती है। एक और सवाल था उसके दिल में। धमकी भरे संदेशों से तो विहान बहुत ही नीच, घटिया और गिरी हुई सोच का लग रहा था। फिर आरवी उससे शादी क्यों कर रही थी? और अगर इतना ही प्यार था विहान को उससे, तो उस दिन उसके साथ वो सब क्यों किया उसने? कर लेता शादी, बना लेता अपना। शान के जहन में बहुत से सवाल था और इन सवालों के जवाब या तो आरवी दे सकती थी या फिर खुद विहान। शान ने मन ही मन कुछ ठाना, अब उसे इन सभी कड़ियों को जोड़ना था, कुछ भी करके सब पता करना ही था। बाहर आरवी बेड पर ही सो गई थी। कुछ देर बाद अचानक ही उसकी आंखें खुली। वो खुद को बेड पर देखकर झट से उठकर बैठ गई, फिर अपने सर को छूते हुए बोली, आज मैं यहाँ कैसे सो गई, उन्होंने मुझे जगाया क्यों नहीं। ये कहते हुए उसने उस तरफ नजरें घुमाई जैसे जहां शान सोया था, पर वहां उसे ना देखकर वो और हैरान होते हुए बोली, इतनी रात को ये कहाँ चले गए। उसने बाथरूम की तरफ नजरें घुमाई तो वो भी बाहर से बंद था, बालकनी का दरवाजा भी बंद था। कुछ सोचकर वो उठकर उसके स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई और गेट नॉक करते हुए बोली, आप अंदर हैं। अचानक आई उसकी आवाज सुनकर शान चौंक गया। उसने उसका फोन झट से स्विच ऑफ करके टेबल के ड्रॉअर में डालते हुए सहजता से जवाब दिया, हाँ। आप अभी तक काम कर रहे हैं, सोएंगे कब, शरीर को आराम की भी जरूरत होती है, आरवी ने चिंता जताते हुए बाहर से ही कहा। तो शान ने भी अंदर से जवाब दिया, कुछ जरूरी काम था, तुम सो जाओ, मैं कुछ देर में सो जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अंदर आ जाऊं, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस साथ में बैठ जाऊंगी। नहीं, चुपचाप जाकर सो जाओ और अंशु के पास ही सोना, अकेले डर जाती है, अंदर से शान की सख्त आवाज आई। आरवी का मुंह छोटा सा हो गया, वो वापस जाकर बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद शान बाहर आया, तब भी आरवी जाग रही थी। शान अपनी तरफ जाकर बैठ गया तो आरवी झट से उठकर बैठ गई और बेड से उतरने लगी। तभी उसके कानों में शान की आवाज पड़ी, कहाँ जा रही हो? आवाज सुनकर आरवी उसके तरफ पलट गई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब आप आ गए हैं तो मैं अपनी जगह जा रही हूँ, आप अंशु के साथ आराम से सो जाइए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उसने एक बार फिर जाने के लिए कदम बढ़ाया, तभी उसके कानों में शान की आवाज फिर से पड़ी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आरवी के कदम रुक गई। उसने हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके मुड़कर उसको देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? बेड इतना बड़ा है कि तीन लोग साथ में सो सके, अंशु रात को उठती है तो तुम्हें ढूंढती है, तो उसके पास ही सो जाओ। उसकी बात सुनकर आरवी की आंखें और बड़ी बड़ी हो गईं, तो शान ने आगे कहा, डोंट वरी, सोते हुए तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा मैं। आप गलत सोच रहे हैं, वो बात नहीं है, अगर मुझे आपसे ऐसा कोई डर होता तो मैं इस कमरे में आती ही नहीं, आपने ही मुझे बचाया था, फिर खुद मेरे साथ वही कैसे कर सकते हैं? विश्वास है मुझे आप पर, बस मैं बेड पर नहीं सोना चाहती क्योंकि आपको मेरा वहां सोना पसंद नहीं है, पहले ही मैं आपके ऊपर बोझ बनी हुई हूं और तकलीफ नहीं देना चाहती मैं आपको। आरवी ने तुरंत ही बात साफ कर दी और शान को देखने लगी। कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? लाइक अंदर कमेंट करके बताइए और मेरी प्रोफाइल पर जाकर बाकी स्टोरीज भी ट्राई लीजिए, आपको पसंद आएगी।